जब भी हम मधुबन में आते हैं तो एक इनविजिबल एनर्जी, एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है सभी को। और जब भी पुरुषार्थियों के संगठन में बैठते हैं तब भी एक हायर पावर, एक शक्ति का अनुभव होता है। कल हम एक बहन का अनुभव सुन रहे थे जो ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड नहीं है और उसका ना कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड है। वो एक दूसरी संस्था से जुड़ी हुई है और 2020 में वो अपने गुरु से मिली और गुरु ने उसे कहा कि तुम साइलेंस में चली जाओ। तो फरवरी 2020 से वो मौन में चली गई और अभी 5 साल हुए, कल परसों ही उसने शायद अपना मौन तोड़ा। और उसने अनुभव में सुनाया कि मैंने ये जाना कि सब कुछ मौन से ही जन्म लेता है और जिसने मौन को नहीं जाना उसने जीवन को नहीं जाना। और उसने ये भी कहा यदि मेरे जैसी कोई आत्मा जिसका कोई आध्यात्मिक पार्श्वभूमि नहीं है यदि मुझे ये अनुभव हो सकता है तो आप सबको कितना अनुभव होगा। और वो बहन एक सिंगर है और एक पेंटर है। सिंगिंग का करियर और पेंटिंग के करियर में बहुत आगे थी, फिर भी जीवन में एक रिक्तता और एक खालीपन था। उसने कहा कि जो शुरुआती दौर था मौन का वो बहुत कठिन था क्योंकि मन में हलचल, मन में विचार, मन में तूफान, बोलने की इच्छा, वो धीरे धीरे वो सब शांत होते गया, शांत होते गया, शांत होते गया। और उसने लिखा या कहा कि मैंने अनुभव किया कि मैं कुछ और हूँ, ये शरीर कुछ और है, ये मन कुछ और है और मैं एक प्रेजेंस, एक उपस्थिति मात्र हूं। और धीरे धीरे उसी मौन में उसे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो 5 साल तक चला उसका वो साइलेंस। तो जब मधुबन में आते हैं तो यहां आकर वो सब नहीं करना है जो संसार में रहकर करते हैं। ये साइलेंस जोन है, यहां पर उस साइलेंस का अनुभव करना है। चाहे योग में बैठे हैं, चाहे कोई क्लास सुन रहे हैं या मुरली सुन रहे हैं या फिर चलते फिरते उठते बैठते, योग के गुप्त प्रयोग होते रहे। परमात्मा छत्र छाया मेरे ऊपर है। और मधुबन में जब है तब समय का पूरा पूरा उपयोग करना है, फायदा उठाना है। फर्स्ट 1 आवर रूल। दिन का जो पहला 1 घंटा होता है हमारे जीवन का, अपने जीवन का, फर्स्ट 1 आवर रूल, इसके लिए वो बातें जिसके वजह से हम कंफ्यूज्ड है, जिसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये पहला घंटा उसके चिंतन के लिए रखना है। 24 आवर्स का, यदि आप 2 बजे उठ रहे हैं तो 2 से 3 का समय, 3 बजे उठ रहे हैं तो ये 3 से 4 का समय, 4 बजे यदि उठ रहे हैं तो 4 से 5 का समय, और 5 बजे उठ रहे हैं तो पाँच से छः का समय, जो भी समय है और जितने भी बजे उठ रहे हैं, फर्स्ट वन आवर रूल, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जीवन की, या जिसे हम कहे समस्या, या जिसके विषय में निर्णय नहीं ले पा रहे, यहां रहना है या वहां रहना है, जॉब करना है कि नहीं करना है, डिपार्टमेंट में है इधर रहना है कि चेंज करना है, बड़े डिसीजंस कब लेने हैं, फर्स्ट वन आवर रूल। और एक दूसरा शब्द है ओपन लूप, ओपन लूप, ओपन लूप अर्थात कुछ कार्य जानबूझ के अधूरे छोड़ देने हैं, ताकि वो अवचेतन में उसका चिंतन चलता रहे। जैसे जो होमवर्क यहां दिया जाता है वो पूरा एक धक से नहीं कर लेना है, सुबह आधा करके छोड़ दो उसको। मुरली भी जो है, जो खुद की स्टडी है, थोड़ा सा पढ़ो और छोड़ दो, पूरा एक धक से नहीं पढ़ लेना। तो मन कहता है कि अभी ये काम पूरा हो गया, इसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी है, हम भूल गए उसको क्या कहते हैं, कि मन जो चीजें अधूरी रहती है उसको याद रखता है, और जो पूरा हो गया उसको तुरंत भूल जाता है। इस क्या कहते हैं इसको, इसके पहले भी एक बार डिस्कशन किया था, इसका एक रूल है, ये एक लॉ है ये। हाँ, याद आ रहा है किसी को? याद नहीं आ रहा है। जैसे होटल का वेटर जो होता है ना, एक टेबल पर जाता है, 10 चीजें ऑर्डर करते हैं वो परिवार, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, वो सारा याद रखता है। तब तक उसे याद रहता है जब तक वो ऑर्डर सर्व नहीं कर देता। एक बार सबको सब दे दिया, उसके बाद में वो भूल जाता है, वो पार्टी चली गई, उसे फिर कुछ याद नहीं रहता है उसका। तो ओपन, हाँ, जोर से, ज़िगार्निक इफेक्ट। यस, ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक नाम के एक व्यक्ति ने इसे ढूंढा था, तो इसको कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट, ओपन लूप। तो कुछ कुछ कार्य जानबूझ के अधूरे छोड़ देने हैं, ताकि मन उन पर अवचेतन में काम करता रहे। और एक दूसरा शब्द है मिनिमम क्रिएटिव डोज, कि जो आप कर रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा एक डोज ऐड कर दिया जाए कि जिससे उसमें एकदम फोर्स आ जाए, पावर आ जाए, उसमें इम्पिटस आ जाए, एक ऊर्जा, एक ब्राइटनेस आ जाए उसमें। जैसे जो सिंगर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वॉइस वार्म अप करते हैं गाने से पहले, या तो कुछ गर्म पीते हैं, या तो चिल्लाते हैं जोर जोर से, या तो गला साफ करते हैं, या तो फास्ट रीडिंग करते हैं, जोर से पढ़ते हैं। सीधा आए, अमृत वेला किया, मेडिटेशन किया और यहां आके क्लास कराया। वो आवाज में सुस्ती रहती है, डलनेस रहती है, ब्राइटनेस नहीं रहती है उस आवाज में। इसलिए जो वक्ता है, प्रवचन करता, भाषण करता या भाष्यकार, उसको यहां अगर क्लास कराना है और वो सुबह 5 बजे करानी है, तो अपने कमरे में जाके एक बार जोर से कुछ पढ़ के आना है, ताकि आवाज थोड़ी खुल जाए। क्योंकि सीधा अगर मेडिटेशन हॉल से यहां आते हैं तो वो आवाज में अव्यक्त भाव तो ठीक है, परंतु एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ब्राइटनेस होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए, एक शक्ति का अनुभव होना चाहिए। वो नहीं होगा, वो आवाज में सुस्ती रहती है, सुस्त आवाज रहती है। तो कमरे में जाके, या तो जो आप सुनाने वाले हो, जिस मुरली पर सुनाने वाले हो, उस मुरली को एक बार लाउड रीडिंग करके आना है। लाउड मतलब जोर जोर से नहीं, लाउड मतलब स्पष्ट, क्लैरिटी के साथ। तो ये एक एडिशनल नियम आज से जुड़ गया, ये वक्ताओं के लिए है केवल। एक बार कमरे में जाके या कहीं अंधेरा कोना अगर हो तो वहां पर एक बार लाउड रीडिंग, ताकि आवाज खुल जाए, सीधा मौन से माइक पर नहीं बोलना है, ठीक है। इसको कहते हैं वॉइस वार्म अप। वार्म अप, रनिंग करने से पहले सीधा रनिंग करने जाते हैं क्या? पहले क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, नहीं तो पैरों में दर्द होता है। मैराथन करने से पहले पहले वार्म अप होना चाहिए थोड़ा सा। और इवन रनिंग, जब मैराथन पूरा हो गया, 10 किलोमीटर भाग लिए, उसके बाद में एकदम नहीं रुकते, थोड़ा देर चलते फिरते नीचे ऊपर करते हैं और फिर रुकते हैं। ये रनिंग के नियम है। उसी तरह ये वॉइस भी क्या है, एक ये भी एक मैराथन ही है। तो पहली बात बताई, 1 आवर रूल, जीवन की जो बातें हैं वो उस पहले घंटे में के लिए छोड़ दो, अमृत वेले के लिए, जिसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हम, वो फर्स्ट आवर वो काम करना है, रादर देन वो रूटीन वाला योग, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इधर से किरने उधर से किरने, इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, यहां घुसा उधर घुसा, इसको सकाश उसको सकाश, ये सब बाजू रखो, क्योंकि दिन भर उस पर चिंतन नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट 1 आवर रूल, सेकंड इज ओपन लूप। होमवर्क को एक धक से नहीं करना। पिछले भट्टियों में लोगों ने लास्ट 3 दिन में पूरा 1 महीने का होमवर्क करके भेजा, दिन भर महीने भर कुछ नहीं किया। हाँ, एकदम जागृति आई 3 दिन पहले, धड़ाधड़ होमवर्क भेजे पूरे दिन रात एक करके, वो भी अच्छी बात है। यहां तो हम कह रहे एक ही दिन में एक धक से भी होमवर्क नहीं करना है, हम कह रहे थोड़ा सा और फिर छोड़ दो और फिर शाम को। उसी तरह मुरली भी एक सा धक से नहीं, ताकि मन में रहे कि बाकी है बाकी है बाकी है बाकी है। और क्रिएटिविटी जो होती है ना, उसके 4 नियम होते हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे पहला रूल है प्रिपरेशन। क्रिएटिविटी ऐसी नहीं आती है, जो मुरली पर चिंतन करना है, क्लास कराना है, तो हम देखते हैं उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहती है। क्यों? अभी जैसे भाई जी ने इतने सारे उदाहरण दिए, तो वो क्या हो गया, एक क्रिएटिव हो गया, उसमें एक एनर्जी भर गई, उस क्लास में पावर आ गई उसमें। पर हम लोग क्या करते हैं, क्लास करते कराते रिवाइज कराते, वो बस वहीं के महावाक्य उधर के इधर, उसमें ना तो अपने अनुभव होते, ना कोई स्टोरी होती है, ना कोई कहानी होती है, कोई उदाहरण नहीं, कुछ नहीं, डलनेस होता है उसमें। पर जैसे ही जीवन की स्टोरीज उसमें जुड़ जाती है, प्रैक्टिकल बातें उसमें आ जाती है, तो फिर हाँ ये कर सकते हैं, तो उसमें एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, वो मुरली कौन सी मुरली है 2002 की, और हम तो कहेंगे कि इस दिन में क्या हुआ था उसका रिसर्च करो, गूगल में टाइप करो व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाट आर द इवेंट्स इन 11th March 2002। कुछ तो आपको मिलेगा जो उस दिन से, क्योंकि ये मुरली उस समय चली है। अगर इस मुरली को समझना है तो इसके इस दिन के आसपास की बातों को समझना होगा। मधुबन में उस दिन क्या हुआ था आसपास, जैसे दादी जानकी क्लास कराती थी, वो क्लास केवल वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने आजादी के आसपास के 1-2 दिनों में क्या हुआ वो जिनको पता है, क्योंकि उसमें ऐसी पॉइंट आती थी कि वो पकड़ में नहीं आती थी। वो तभी पकड़ में आती थी कि हाँ अच्छा, ये जो रात शाम को वो हुआ ना, उसका रेफरेंस था इधर। तो इस मुरली में भारत में क्या हुआ और विश्व में क्या हुआ, इस तारीख को आपको तुरंत मिल जाएगा, सारा AI ChatGPT सब जगह से। उस तारीख को कौन से इवेंट हुआ थे, सरकार का क्या हुआ था, किसकी डेथ, किसका बर्थ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर्ल्ड में क्या हुआ था, कौन सा वॉर चालू हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ। तो वो एक चीज वक्ता के लिए है, ये वो थोड़ा सा इसका स्टडी करके आया। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन, दूसरा पॉइंट है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन मतलब थोड़ा मौन में चले जाओ, मुरली एक बार पढ़ लिया, रिसर्च कर लिया, ढूंढा उसके बारे में सब कुछ, फिर थोड़ा साइलेंस में चले जाओ, इनक्यूबेशन पीरियड में चले जाओ, ताकि सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है, वो उसको अपने आप चर्निंग करना चालू कर, क्यों हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, अब वो उसको कुछ तो करेगा उसका अंदर ही अंदर, यह है इनक्यूबेशन पीरियड। तीसरा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में 2 बातें आती है, एक है यूरेका मूवमेंट और एक अहा मूवमेंट। एक ऐसे मूवमेंट आते हैं कि जिसमें अचानक से नई आइडियाज आ जाती है, अचानक बैठे हैं क्लास में और अचानक से कुछ स्ट्राइक हो गया, अच्छा ये उत्तर है उसको। जैसे वो आर्किमिडीज था, उसको बताया कि ढूंढ के लाओ, ये इसमें सोना कितना है, असली सोना और नकली कितना है। वो ढूंढते बैठता है, ढूंढते बैठता है, कुछ भी उसको पकड़ पकड़ में ही नहीं आता है, कैसे ढूंढू अब। और जब नहा रहा होता है, नहाते नहाते वो पानी निकल जाता है नीचे, तब उसको आता है, वहां से ही नंग धड़ंग राजमहल में भाग के आता है वॉशरूम से सीधा, कि यूरिका 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 यूरिका, मुझे मिल गया मुझे मिल गया। इसको कहा जाता है यूरिका मोमेंट, को यूरिका कहते हैं, यूरिका व्हाटएवर, आहा मोमेंट, यूरिका मोमेंट, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब अचानक से जो खोज हो जाती है, हम चाहते नहीं थे वो ढूंढना, पर अचानक से, जैसे पेनिसिलिन इस संसार का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो फ्लेमिंग पेनिसिलिन ने खोज के निकाला, वो खोज ही नहीं रहा था, कुछ और ही कर रहा था, वो करते करते ये मिल गया उसको। इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी, सडन इन्वेंशन, सडन मूवमेंट, सडन न्यू आइडियाज, फ्लैश्ड सन, इल्यूमिनेशन। इस पीरियड को कहते हैं इल्यूमिनेशन। तो ये होगा, और लास्ट है वेरिफिकेशन। अब ये आइडियाज आ गई, प्रिपरेशन कर लिया, सब कुछ किया, वेरीफाई, फिर उसको टेस्ट करो, एडिट करो थोड़ा सा। सब जरूरी नहीं है कि हमने जो कुछ सुना यहां आके सब कुछ ही वैसे के वैसे सुना देना है, उसको एडिटिंग लगता है, एडिटिंग। कई लोग होते लिखते बहुत अच्छा है पर सुना नहीं पाते। अभी एक लेखक है, उसने अपनी कहानी लिखी, अब फिल्म डायरेक्टर के पास जाता है पर वो नहीं सुना पाता, वो उसको नैरेटर को लेके जाना पड़ता है, नैरेटर को 5,000 रुपए देना पड़ता है। तो नैरेटर सुनाता है, फिल्म डायरेक्टर आधा घंटा एक घंटा दो घंटा कहानी सुनता है, और फिल्म डायरेक्टर को अगर पसंद आ गई तो वो अपनी कहानी को 1-2 लाख में बेचता है, तो इसका भी फायदा हो गया। पर पसंद नहीं आई तो दूसरे के पास जाता है अपनी कहानी लेके, तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास। और ये जो नैरेटर अलग होते हैं वो उनको वही काम है बस, क्योंकि जो लिखता है उसको बोलते नहीं आता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहां हमें दोनों पर काम करना है, लिखने पर, बोलने पर, सब चीजों पर। तो ये पांचों, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, PIIV, ये क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस है। तो ये वक्ताओं के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो आज के होमवर्क, सबसे पहला है रूहानी पुष्प, किसका, प्रेम का। तो ज्यादा काम नहीं दे रहे, रोज बहुत ज्यादा काम देते हैं तो करते नहीं फिर। बस एक फूल का चित्र निकालो और बीच में लिखो प्रेम, ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी। दूसरा है लिखने का कार्य, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। क्या था, मैं बहुत बहुत, पर अच्छे से लिखना है 7 बार। क्या लिखेंगे, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। तीसरा कार्य, अपनी कोई भी 3 स्पेशलिटीज में से, या उनको लिखो और इनमें से 1 स्पेशलिटी को मुझे आज कार्य में लगाना है। जैसे किसी के पास लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो सुनते बहुत अच्छा है, एक तो होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा है और दूसरे होते हैं जो सुनते बहुत अच्छा है, कभी डिस्टर्ब इंटरप्ट नहीं करते, शांत बैठ के पूरा सुनते हैं, आहा उसको सुनने में ही आनंद आता है। तो किसी के पास वो लिसनिंग पावर है तो उसको कार्य में लगाना है आज, कोई भी स्पेशलिटी। और एक इमेजिनेशन है, दिल का संकल्प कहां पहुंचता है, बाप दादा के पास। तो जब भी योग में बैठेंगे तो सोचो मेरे हृदय में, हृदय को देखो और वहां से किरणें निकल रही है और वो बाबा को तक पहुंच रही है, या तो आत्मा से किरणें निकल कर उस तक पहुंच रही है, या दिल से किरणें निकल कर तक उस तक पहुंच रही है। और लास्ट में फिर से 7 बार लिखना है, महानता मेरा सच्चा स्वरूप है, ग्रेटनेस इज माई ट्रू नेचर, महानता मेरा सच्चा स्वरूप है, ये 7 बार लिखना है। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, ये 7 बार लिखना है। एक फूल का चित्र, ये ड्राइंग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आता है, मेडिटेशन होता है। ड्राइंग इज अ मेडिटेशन, राइटिंग इज अ मेडिटेशन, आर्ट इज अ मेडिटेशन, क्रिएटिविटी इज अ मेडिटेशन, ये सब मेडिटेशन से। और एक विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन भी जब करोगे तो कैसा विजुअलाइजेशन हो वो बहुत स्पष्ट, मतलब जब आप बोल रहे हो तो वो सामने वाला पूरा जैसे इमेजिन कर सके। जैसे हम कोई अगर कहानी सुना, एक गांव था, आपके आगे सामने गांव, उसके उसमें एक घर था, वो घर दिखना चाहिए। अंधेरी रात थी तो रात आगे चाहिए, फिर आंधी तूफान चल रही तो आंधी तूफान आ जाए, ऐसा एक स्पष्ट दिखे। तो हम भी जो इमेजिनेशन करें ना, तो देखो उसको कि यहां पर, यहां से संकल्प जा रहा है किसी रथ पर बैठकर और भगवान के महल में पहुंचा, महल में वो अंदर बैठा है, द्वारपाल को कह दो। तो इमेजिनेशन में विविड हो, इमेजिनेशन बहुत स्पष्ट हो, उसमें कलर डाल दो और एक एक डिटेल्स को साथ देखो उसको। जो पूरी मुरली होती है ना, जो वक्ता है उसे पूरी मुरली एक बार पढ़नी है, याद करनी है, और एक बार पूरी आंखों के सामने देखनी है उसी दिन अमृत वेला, स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा पहला ये था, पहला ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, पूरा पूरा उसकी आंखों में जैसे वो छप जाए, वो शब्द शब्द ना रह के पिक्चर बन जाए। शब्द शुड गेट कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट इनटू ड्रिल, वर्ड्स इनटू पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर्स हमें याद रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के पांच कार्य। और अभी जो सिंगर्स है, आप सिंगर नहीं सॉरी वक्ता है, 12 तारीख आज क्या है, 11, 12 का किसका है, गौतम भाई, 13 को पन्नालाल भाई, 14 को बाबाराम भाई जी, और उसके बाद वालों की लिस्ट अभी दे रहे हैं। बहनों का हुआ नहीं था और कुछ भाइयों का नहीं हुआ था। सुमित भाई 14 तारीख, 15 तारीख लिख के रख लो जिनका नहीं हुआ है। और फिर इधर रिया बहन, दीपा बहन, दिव्या बहन, उषा बहन, डॉक्टर रम्या बहन और काजल बहन जो है अभी जो दिख रहे हैं, बाकी तो छुपे हुए हैं चेहरे। तो और उस मुरली के साथ में न्याय करना है, ठीक है ना, अन्याय न्याय करना अर्थात उसको पहली बार पढ़ना, दूसरी बार पढ़ना, पूरा याद करना, प्रकृति में जाना एक बार, वहां चिंतन करना, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उस डेट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना, सब कुछ करना है। थोड़ा वो अचानक आई हुई आइडियाज उसको लेना है, फिर लास्ट में एडिट करना, फिर सुबह सुबह आने से पहले क्या करेंगे, जोर से या तो चिल्लाओ या तो आवाज पर थोड़ा काम करके फिर इधर आना है, सीधा अव्यक्त आवाज में आके बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारे कार्य करने हैं। कितने लोग हो गए ना, काफी हो गए ना, सबको डेट के साथ एक लिस्ट बना देना उसकी। सात लोग हो गए ना, दैट इज कुशल भाई का हो गया इस बार नहीं ना, एक कुशल भाई का ले लो लास्ट में। दीपाली बहन का हुआ है क्या, दीपाली बहन का ले लो उसके बाद। हाँ बोल दिया ना, हो गया ना। ओम शांति।
तलब सुकूं, हर इंसान की चाहत सुकूं, थके कदमों की मंजिल सुकूं, टूटे ख्वाबों का मरहम सुकूं, खोए दिल की पुकार सुकून, हर सवाल का जवाब सुकून,
शोर के बीच सन्नाटा सुकून, हर आशा की छाया सुकून,
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून, हर खोज का अंजाम सुकून, दिल का विराम है सुकून, संतोष की चादर सुकून, मिट जाने का उत्सव है सुकून,
हंसों के पार सुकून, हर जंग की जीत सुकून, हर दुख के आगे सुकून, खुदा से मिलन सुकून,
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून।